19th March 1982, अव्यक्त मुरली। आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे हैं। अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएगा। कर्म से वह सहज जान लेंगे। कर्म सबसे स्थूल चीज है, संकल्प सूक्ष्म शक्ति है। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती है, वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है, लेकिन इससे सहज कर्म है। उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई है, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। जैसे धरणी की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती है, इसलिए चित्र को चरित्र में लाओ। 19th March 1982, अव्यक्त मुरली। बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे हैं। अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएगा। कर्म से वह सहज जान जाएंगे। कर्म सबसे स्थूल चीज है, संकल्प सूक्ष्म शक्ति है। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती है, वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। कर्म शक्ति एक है, संकल्प शक्ति एक है, कर्म शक्ति। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है, लेकिन इससे सहज कर्म है। उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई है, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। कर्म से संकल्प तक पहुंचाना, नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, संकल्प को भी क्या करती है, नीचे लाती है। जैसे धरणी की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती है, इसीलिए चित्र को चरित्र में लाओ। तो बाबा कह रहे हैं, अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान बनेगा। संसार की आत्माओं के आगे हमारे कर्म ही क्या बनेगा, हमारी पहचान। कौन से कर्म? अच्छे कर्म। अच्छे कर्म तो दुनिया के लोग भी करते हैं, अच्छे ही करते हैं वो। कल्याणकारी कर्म, श्रेष्ठ कर्म, नहीं वो नहीं। किस प्रकार के कर्म, कौन से? जैसे श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म, कल्याणकारी, चरित्र को सुधारने वाले कर्म, दूसरों के चरित्र को सुधारने वाले कर्म। आज संसार में चरित्र गिरा है, चरित्र की कहीं चर्चा नहीं है। जो दुष्चरित्रवान है उन्हें ही महान श्रेष्ठ समझा जाता है। चरित्र की चर्चा कहीं नहीं है। आज के युवक क्या उन लोगों के पीछे है जो चरित्रवान है? किसे अपना रोल मॉडल समझते हैं? अपना रोल मॉडल किसको समझते हैं? जो चरित्रवान है, जो श्रेष्ठ है, जो योगी है, जो तपस्वी है, उनको? या जो चरित्रहीन है, जो विकार और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको? मराठी में एक कहावत है, केसान वळण लावून देवानंद बनण्यापेक्षा हृदयाला वळण लावून विवेकानंद बनणं श्रेष्ठ आहे। बालों को सजा सवार कर देवानंद बनने से हृदय को सजाना, सवारना और विवेकानंद बनना, ये उससे श्रेष्ठ है। तो कौन से कर्म हो जिससे चरित्र का निर्माण हो, ऐसे कर्म करने हैं। और कौन से कर्म करने, किस तरह के कर्म करने? श्रीमत के आधार पर किए हुए कर्म, उसमें कल्याण होगा। टांग अगर टूट भी जाए, उस टूटी टांग से भी कल्याण होगा। इसके लिए चिल्लाओ नहीं, टांग टूटी, आत्मा तो नहीं टूटी ना। इसके लिए श्रीमत पर जो भी कर्म किए जाएंगे श्रेष्ठ कर्म है। अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, कुछ तो समझो। कल की मुरली में शब्द था एक, कुछ तो समझो। तो सबसे पहला श्रेष्ठ कर्म, दूसरा कल्याणकारी कर्म, तीसरा चरित्र बनाने वाले कर्म, चौथा श्रीमत के आधार से हुए कर्म, पांचवा निस्वार्थ भाव, निष्काम भाव से किए हुए जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म है। जिस कर्म में आसक्ति होती है, लगाव होता है, फल की कामना होती है, फलाकांक्षा होती है, जहां फलाकांक्षा आ जाती है कि इससे ये मिले, इसके लिए ये किया जा रहा है, वहां पर वो कर्म निस्वार्थ नहीं रहता। जो जो कर्म निस्वार्थ होगा, जो जो कर्म निष्काम होगा, वो श्रेष्ठ कर्म। कर्म तीन प्रकार के हैं, कर्मों के कई सारी कैटेगरी से एक कैटेगरी जो गीता में लिखी हुई है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। सात्विक कर्म श्रेष्ठ कर्म, सत्य वचन बोलना, ये सब सात्विक कर्म है, दान पुण्य करना। राजसिक कर्म यही सारे, परंतु स्वार्थ भाव से करना, अहंकार से करना, नाम मान शान की कामना, ये राजसिक में आता है। तामसिक चोरी, हिंसा, ये सब तामसिक कर्म है। कर्म और तीन प्रकार के, कर्म, अकर्म और विकर्म, जो बाबा मुरलियों में कहते हैं। ये दूसरे प्रकार के कर्म है, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। ये और दो कैटेगरी से कर्म की, सकाम और निष्काम, एक स्वार्थ एक निस्वार्थ, ये दो प्रकार। और एक स्वार्थ के लिए किए हुए कर्म, एक निस्वार्थ के लिए किए, निस्वार्थ भावना से किए हुए कर्म, परमार्थ। और तो चलो ये हो गया। और छठा, कर्म कैसे हो? सुख देने वाले कर्म, जिससे आत्माओं को सुख मिले। वो सारे कर्म जिसमें आत्मा को दुख प्राप्त होता है, वो सभी तामसिक या राजसिक कर्म में आएंगे। तो वो सारे कर्म जिससे किसी भी आत्मा को, चाहे समीप चाहे दूरस्थ, कहीं पर भी आत्मा हो, उन सभी को सुख मिले, वो कर्म करने हैं। और योग युक्त स्थिति में किए हुए कर्म, अर्थात परमात्मा याद में किए हुए जो भी कर्म है, वो सभी श्रेष्ठ कर्म है। याद में किए हुए सभी कर्म श्रेष्ठ कर्म। ये चैतन्य याद की यात्रा है, कल बोला था बाबा ने, तुम्हारी ये सच्ची सच्ची चैतन्य याद की यात्रा है। याद की इस चैतन्य यात्रा में किए हुए कर्म श्रेष्ठ कर्म है। और अनासक्त वृत्ति से किए हुए, अनासक्त उपराम साक्षी कहो, इस भाव से डिटैच्ड एटीट्यूड से किए हुए कर्म, और निमित्त भाव हो जहां अहंकार बहाना हो, निमित्त भाव से किए हुए कर्म,
कर्तापन से
कर्तापन की भावना बहाना हो, जैसे वह करा रहा है, हम कुछ कर ही नहीं रहे, पानी तो आ रहा है किसी भी नल से है, वो नल हम है, नल को किस बात का अहंकार, पानी तो ऊपर भरा है टंकी में, वो तो केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा पानी आ रहा है, अगर नल ये सोचे कि देखो कितना पानी निकलता है मुझसे और कितनों की मैं प्यास बुझाता हूं, पानी ऊपर से बंद हो जाए तो सप्लाई फिर,
लेकिन नल ने पानी कंट्रोल कर रखे
हो, हाँ वो तो है,
तो बाढ़ आ जाएगी
महत्व तो है ही है, तो नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करना और भूल जाना, क्या किया किसका कल्याण किया, जैसे वो होली शैडो का बताया था कभी, उस तरह ये भी भाव ने कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, ये भी अहंकार को जन्म दे सकता है, जिसका हम कल्याण करें उन्हें ये पता ना चले कि हमने किया, और हमने जिसका कल्याण किया हमें भी ये पता ना चले कि हमने उनका कल्याण, ये भाव भी कि मुझे बाबा ने निमित्त बनाया, मुझे, इसमें भी माया आ सकती है, इसके लिए दूसरा त्रिकालदर्शी स्थिति में किए हुए कर्म, ऐसे कर्म जिसके लिए पश्चाताप ना करना पड़े, कई सारे ऐसे कर्म होते पहले ही पता रहता है ये श्रीमत के विरुद्ध है और पश्चाताप करना पड़ेगा, फिर भी आदतवश संस्कारवश देह की आदर्शवश या मन की आदतवश वो कर्म होता है, मन सोचता है कि इसे नहीं करना चाहिए परंतु देह, स्पिरिट इज रेडी बट फ्लैश इज वीक, परंतु देह नहीं मानता और व्यक्ति उस वासना में उतरता है और दुष्कर्म विकर्म कुकर्म कर बैठता है, इसके लिए हर कर्म त्रिकालदर्शी, त्रिकाल तीन काल का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए कि इस कर्म का क्या परिणाम होगा, दुख होगा कि सुख होगा, इसके लिए उत्तेजना में किए हुए कर्म, क्रोध में किए हुए कर्म, व्यक्ति बाद में पश्चाताप करता है, उसके लिए त्रिकालदर्शी स्थिति में किए हुए कर्म, नेक्स्ट सोच कर किए हुए कर्म, तोल मोल कर किए हुए कर्म, सोच समझ कर किए हुए कर्म, और उसके लिए क्या करें, या फिर ये सोचना कि हमारे कर्म यादगार बन रहे हैं, इसके लिए वो श्रेष्ठ होने चाहिए, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे उसे देखकर फॉलो करने वाले कितने हैं, हजारों लाखों, हम विश्व की स्टेज पर है, मधुबन अर्थात विश्व की स्टेज, हमसे किसी ने कुछ कहा नहीं पर देखा जरूर, और देखकर ही सीधा कर्म में ला लिया अपने जीवन में यहां से जाकर, तो वो अच्छा हो या बुरा कुछ भी हो, वो हम निमित्त बने उसके लिए, और हाँ यही कर्म, ये चलो ये भाव रखना कि यही कर्म रिपीट होने वाला है, कल्प कल्प की बाजी है, इसके लिए श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं, और किसी को कहने की जरूरत नहीं, अच्छे कर्म जो कल की मुरली में भी था, मुझे देखकर सब करेंगे, छोटे सो अर्जुन, दूसरों के लिए वेट नहीं करना है, इनिशिएटिव खुद लेना है, नेक्स्ट नम्रता से किए हुए कर्म, नम्रता का भाव हो वहां पर, निमित्त भाव हो, निर्मल वाणी और नम्रता का भाव, गुणों का दान करने वाले कर्म हो, दूसरों को प्रेरणा देने वाले कर्म हो, दूसरों में उमंग उत्साह भरने वाले कर्म हो, प्रेरणादायी कर्म, रॉयल कर्म हो, वो कर्मों से ऐसा ना लगे कि कर्मों से, जैसे हम इधर मार्केट में एक दुकान है उसमें लिखा हुआ है कपड़े की दुकान है, वहीं सामने ही है. कस्टमर इज अ किंग एंड किंग नेवर बार्गेन्स. कस्टमर जो होता है वो राजा की तरह है, वो कभी भाव वगैरह नहीं करता है. रॉयल होता है वो. ऐसा लिखा है वहां दुकान में. चलो जो भी है, परंतु बाबा कहते हैं ना, रॉयल बच्चे जो होते हैं नीचे की उठाए, गिरी हुई चीज कभी उठाते नहीं है. राजा के सामने कुछ आता है नजराना, वो खुद थोड़ी हाथ लगाता है, अरे क्या है क्या है, देखो, इशारा करता है बस. तो ऐसे कर्म छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे बहन जी ने भी एक बार, एक बहन जी ने बताया था ना कि हम तो दुकानदार के पास जाते हैं और भाव करते, वो कहता है 10 रुपए की सब्जी, हम कहते हैं 8 रुपए में दो, 8 रुपए में दो, और इधर कितने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं. पेनी वाइज पाउंड फुलिश. छोटी छोटी चीजों के लिए ये कर दे और बड़े बड़े नुकसान ऐसे ही हो जाते हैं हमारे. अरे बेचारा वो 10 रुपए में बेच रहा है, उसको कितना मिल रहा है, उसने उसमें भी बहुत ज्यादा उससे बार्गेन करना. तो ये सारे जो कर्म है, रॉयल कर्म नहीं है, हम राजा के बच्चे. यू आर सन ऑफ किंग, नॉट बेगर्स. किसी भिखारी के बच्चे नहीं है हम. दातापन का भाव हो कर्म में, हमारे कर्म दिव्य गुणों से युक्त हो और दातापन का भाव हो. शृण्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्राः. उपनिषदों के ऋषि, उपनिषद का ऋषि चट्टान पर खड़े रहकर पुकारता है संसार की आत्माओं को. शृण्वन्ति विश्वे, हे विश्व की आत्माओं सुनो, अमृतस्य पुत्राः, तुम अमृत की संतान हो. साधारण नहीं हो तुम, अमृतस्य पुत्राः. आये धामिनि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसं तमसा परस्थात. ये तुम्हारी महिमा है, जो वेदों में वर्णित देवताएं हैं वो तुम हो. आदित्यवर्ण, सूर्य की तरह तुम्हारा प्रकाश है. तमस, तिमिर को मिटाने वाले, अंधकार को समाप्त करने वाला तुम्हारा प्रकाश है. तो ऐसे हमारे कर्म. और उसमें प्यार हो और रिगार्ड हो, चलो ये कहा जा सकता है. और रियल, झूठे सिक्के ना हो, खरे सिक्के हो, ठगने वाले कर्म ना हो. जैसे एक व्यक्ति होता है, वो एक साहूकार के पास जाता है और कहता है कि एक बहुत ही वृद्धा महिला है, बहुत ही गरीब है, विधवा है, वृद्धा है, पूरी हो गई है, 10 साल से एक मकान में रह रही है, 10 साल से एक मकान में रह रही है, और मकान मालिक को देने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं है. आप कुछ मदद कर सकते हो? बिचारी कहाँ जाएगी अब लनारी? वो उसकी करुण वर्णन सुनकर कहता है कि करना तो चाहिए, मैं देना चाहता हूं, ये लो पैसे मेरी तरफ से. और मैं अपने मित्रों को भी कहूंगा कि वो जो वृद्धा है, वो जो गरीब है, वो जो महिला है, अबला नारी है, उसकी सभी मिलकर हम मदद करेंगे. वो कहता है बहुत अच्छा. पर वो व्यक्ति साहूकार उससे पूछता है कि आप कौन हो, आप उसकी क्या मदद, क्यों मदद करना चाहते हो, आप हो कौन? वो कहता है मैं ही उस, वो कहता है, पहले वो कहता है कि मदद इसलिए करो क्योंकि मालिक जो है ना उसको निकाल रहा है, अभी 10 साल से किराया नहीं दिया इसलिए मालिक निकाल रहा है. तो ये साहूकार उससे फिर पूछता है कि आप कौन हो, क्यों उसकी आप मदद करना चाहते हो? वो कहता है वो मालिक मैं ही हूं. चित्त प्रवंचना करना चाहता है, धोखा करता है, ठगता है स्वयं को ही, और सोचता है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं. वैसे ही एक व्यक्ति जब मर रहा होता है तो वो अपनी वसीयत लिखता है, कहता है कि मेरी पत्नी को मेरा जो भी है वो आधा मिल जाएगा, मेरे बेटे को उसका आधा जो है वो मिल जाएगा, बेटी को उसका भी आधा, और जो बचा कुचा है वो गरीबों को मिल जाएगा. तो वकील कहता है बचता तो कुछ भी नहीं है, तो गरीबों को क्या देंगे? तो वो कहता है हाँ वो बात तो सही है, बचता तो कुछ भी नहीं है, परंतु शास्त्रों में लिखा है ना मरते समय अच्छे ख्याल करना चाहिए. वैसे है तो मेरे पास कुछ भी नहीं, वैसे तो पत्नी को भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है, परंतु शास्त्रों में लिखा है ना जब मरते हैं तो अच्छे ख्याल के साथ मरना चाहिए. मिलना तो किसी को भी कुछ नहीं है, वो तो ख्याल अच्छे कर रहे हैं, ख्याली पुलाव. तो झूठे सिक्के ना हो, झूठे कर्म ना हो, सच्चे कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो. सत्य पर आधारित कर्म हो, दिल से किए हुए कर्म, हार्दिक, ऐसे हार्दिक किए हुए कर्म, शुभ भावना से किए हुए कर्म, उसमें दुर्भाव ना हो। शुभ भावना में बहुत बड़ी शक्ति है। जो भी कर्म शुभ भावना से किए जाते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। और सेवा भाव हो उस कर्म में, सेवा का भाव हो, ये भावना हो, वो हो गया, सेवा का भाव हो। क्या कहा कुमुदन ने, समान या आत्माभिमानी स्थिति में जो भी कर्म किए जाएंगे वो श्रेष्ठ होंगे। समान में जो भी कर्म किए जाएंगे श्रेष्ठ होंगे। एक छोटा सा समान, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, छोटा सा समान है, परंतु इस स्थिति में जो भी कर्म किए जाएंगे स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे। और याद में किए हुए कर्म, जो युक्ति युक्ति बोला, याद युक्त योग युक्त जो कहा उसमें आ गया, हो तो याद में किए हुए आत्म उत्थान के कर्म, आत्म उन्नति के कर्म, आत्म अवनीति के कर्म ना हो, जिसमें आत्मा गिर जाए, नीचे हो जाए, उसकी प्रोग्रेस प्रमोशन ना हो के नीचे हो। हाँ, ऐसे कर्म ना हो जिससे नए हिसाब किताब तैयार हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे कर्म ना हो जिससे कि नए हिसाब किताब तैयार हो। महात्मा बुद्ध के जीवन में दिखाया है, कई सारे लोगों ने उन्हें बहुत सताया, किसी ने पागल हाथी छोड़े, जब ध्यान में बैठे थे किसी ने चट्टान गिराई ऊपर से, किसी ने कुछ किया, हर संभव प्रयास किया, सबसे ज्यादा प्रयत्न तो उन्हीं के चचेरे भाई ने किया, देवदत्त जिसका नाम था, और वो भी बचपन से ही उनके विरोध में था, बचपन से ही। वो इधर बुद्ध बने तो वो भी उधर सन्यासी बना, इन्होंने अपना इधर संग चालू किया, उसने अपना संग उधर चालू किया, इसके अपने भिक्षु तो उसके अपने भिक्षुक, तो हर संभव प्रयास किया। बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा, क्या क्या हुआ? तो क्या आपके मन में कभी क्रोध नहीं आता है? इन दुष्टों का कुछ तो करो। वो कहते हैं, जो कुछ मेरे पास आ रहा है ये मेरे ही किए हुए कर्म का प्रतिफल है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये मेरे ही किए हुए। भला इस संसार में कोई किसी को क्या पड़ी है कि दूसरों को दुख दे? हर एक के अपने हिसाब किताब, अपने कर्म है, उनको क्या लेना देना मुझे दुख देने से? अपना काम धाम छोड़ के मुझे क्यों दुख देंगे? वो तो मेरा ही किया हुआ कर्म इज कमिंग बैक टू मी, वापस आ रहा है। अगर मैं ये भी कहता हूं कुछ करता नहीं हूं, इसके लिए मुझे कुछ करना ही नहीं है, और ना ही मुझे कोई नया खाता खोलना है, कोई अकाउंट खोलना नहीं है, इसके लिए मैं क्यों ऐसा कुछ करूं? यहां तक भी ये कहना कि ये दुष्ट है, इसकी प्रतिध्वनि मुझ तक आएगी। ये भी शब्द अगर मेरे मुख से निकलते हैं कि ये दुष्ट है, ये खराब लोग हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर कहते हैं हम इन्हें माफ करते, पहले तो कह देना कि अच्छे नहीं है लोग, ये कहना भी, इसकी भी प्रतिध्वनि होगी, इको होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और वो रिवर्बरेट होकर मेरे पास ही वापस आएगा। तो मैं ये कहूं भी क्यों? वो जो भी कर रहे उनका तो कोई दोष ही नहीं है, मेरे ही कर्म, इसके लिए मैं मौन हूं। ऐसा समग्र मौन, सच इंटीग्रेटेड साइलेंस चलेगा, क्योंकि हम यदि रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ करते हैं, तो कर्म बनते हैं वहां पर। इसके लिए आंतरिक भाव मौन का ही हो, क्योंकि जो भी सामने आ रहा है जीवन में, जो भी परिस्थिति, जो भी व्यक्ति हमारे आसपास है, हमारे संपर्क में है, और उनके द्वारा जो भी सुख दुख प्राप्त हो रहा है, वो नहीं दे रहे हैं, हमारा ही निर्मित है, हमारे ही पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए हुए कर्म का प्रतिफल है। इसलिए ऐसे कर्म ना हो जो नए एक अकाउंट्स, नए बॉन्डेजेस, फ्रेश बॉन्डेजेस क्रिएट करे। और ये भी कहना, बाबा ने मुरलियों में भी कहा है, ये भी कहना, ये बहुत नीचे की अवस्था है कि न हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, ये कहना ये कर्म का फल भोग रहे हैं, ये बीमारी है, ये सब ज्ञान की पॉइंट्स है ना जो हमने रटी रटाई है हमारे पास। मुरलिया सुन सुन के इतने होशियार बन गए हैं कि बहुत सारी पॉइंट्स हमारे पास है जो हम रटते रहते हैं बीच बीच में। परंतु बाबा ने कहा है हाई जंप लगाने वाले हो, हैमर से, व्यर्थ संकल्प के हैमर से चट्टान को नहीं तोड़ी जा सकते, इसके लिए वो कर्म। और दूसरे कोई कौन से कर्म बहुत बाकी है भी, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी भाव में किए हुए कर्म, साक्षी भाव पर परंतु बहुत ऊंची अवस्था है। परंतु हाँ, जो साक्षी भाव में किए जाते हैं कर्म वो सदैव श्रेष्ठ हो जाते हैं। साक्षी हो जाओ, चुप, उमंग उत्साह से किए हुए कर्म, तुम्हारी नस नस में सेवा का उमंग उत्साह हो। बहनों से बाबा ने कहा है, नस नस में, रग रग में तुम्हारा रोआ रोआ पुलक हो उमंग उत्साह की। बाप समान किए हुए कर्म, बाप को फॉलो करने वाले जो कर्म हो वो कर्म हो, और खुशी खुशी से किए हुए कर्म हो, दुखी दुखी होकर नहीं, मर मर कर नहीं, खुशी से किए हुए कर्म हो, हर कर्म में खुशी झलके, जीवन में जो खुशी है, जीवन का जो आनंद है, जीवन की जो पूर्णता को हमने पाया है, जिस सत्य को हमने पहचाना, वो उससे झलके, तो वो तो खुशी वाले कर्म हो। मुरली सुन रहे, जैसे उदाहरण बताया है, एक पिता अपने घर आता है तो देखता है उसका, उसके बेटे, उसकी बेटी छोटी और आसपास के उनके मित्र सारे बैठे हुए हैं, नहीं घर में, सॉरी चर्च में, चर्च में वो बच्चे बैठे हुए होते हैं। तो वो पिता पूछता है, आप लोग क्या कर रहे हो? वो कहते हैं, हम लोग खेल रहे हैं। तो पिता उससे कहता है, अब तक क्या कर रहे थे? वो कहते थे, हम चर्च चर्च खेल रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे, चर्च चर्च खेल रहे थे, तो हमने चर्च चर्च खेला, पहले हमने भाषण दिए, उसके हमने फिर पवित्र ग्रंथ बाइबल पढ़ी, फिर उसके बाद में हमने प्रवचन सुने अच्छे कर्म कैसे किए जाए खेल खेल में, और अभी हम बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जैसे कि मधुबन के आंगन में कोई बैठा और उससे कहो, भाई क्या कर रहे हो? बातें कर रहे इधर उधर की, किसने क्या किया, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चिंतन। उनसे कहो क्या कर रहे हो, तो कहेंगे सुबह सुबह उठे, अमृत वेला अच्छा पावरफुल किया, फिर अच्छी पावरफुल मुरली सुनी, फिर धारणा युक्त कोई क्लास सुना, और अभी बैठकर व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं। हाँ, जो भी कहो उसको, व्यक्ति कभी स्वीकार थोड़ी करता है कि हम कोई श्रीमद विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। वो तो यही कहेंगे ना, वो तो श्रीमत के शब्दों को, श्रीमत के शब्दों से अपने जो कर्म है उसको सुशोभित करता है और नया रूप देता है, चाहे वो कैसा भी कर्म हो। उसकी सजावट जो होता है वो बाबा के शब्द, बाबा शब्द, या मुरलियों के शब्द, या श्रीमत, या निमित्त, या सेवा, ये सारे शब्दों से अपने ही जो भी कर्म है, अपनी भोग की जो तृष्णा है उसे पूर्ण करता है। और कौन से कर्म?
उपयोग,
अलर्ट होके किए हुए कर्म,
उपयोग हो,
उपभोग ना हो, और कौन से कर्म हो सकते हैं? पुण्य कर्म हो, अभी भी मुरली चली थी ना पुण्य कर्म पर, और कर्म की गति जानकर किए हुए कर्म हो, और
संतुष्ट,
हाँ संतुष्ट सततम योगी, हमारा हर कर्म स्वयं भी हम संतुष्ट हो और दूसरों को भी संतुष्ट करने वाले कर्म हो। ऐसे कर्म जिसमें हम खुद ही दुखी है और हमसे ज्यादा दुखी तो वो लोग हैं जिनके बीच हम काम कर रहे हैं, सोच रहे कब ये जाए, ऐसे करना हो, और नहीं वो बहुत ही अपवाद है वो 5% का। शांति धूम, कौन सा चक्र मचाना नहीं, धम चक्र, धम चक्र मचाना नहीं, मुरलियों में आता है ना, धम चक्र मचाना नहीं है, शांति से किए हुए कर्म। हाँ गुण युक्त, गुण में सब आगे, वैसे तो ऐसे सारे हमारे कर्म हो, हर कर्म ये समझ के करो मैं स्टेज पर हूँ, बाबा मुझे देख रहा है, विश्व की सारी आत्माएं मुझे देख रही है। अपने ऑफिस में बैठो तो सोचो कि ऊपर से झांक झांक के लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है, यू आर अंडर CCTV। अच्छा इसमें क्या कहा है बाबा ने, एक होता है पहले संकल्प करना, प्लानिंग करना, फिर कर्म करना, सीधा ही कर्म करो श्रेष्ठ, फिर उसके बाद में संकल्प, ये एक है संकल्प और फिर कर्म करना, पहले सोचना ये करना है वो करना, एक है सोचना नहीं, सीधा ही डायरेक्ट कर्म करो, उससे फिर संकल्प निर्माण होंगे और फिर बुद्धि वो आदत बनेगी, ये एक दूसरी विधि है। बाबा यही कह रहे हैं यहाँ पर, शक्ति स्वरूप का दर्शन कराओ, कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा, नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी संकल्प को भी नीचे ले आएगी, जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर से चीजों को नीचे लाती है। तो सीधा ही डायरेक्ट कर्म करना, जो पता है ना ये करना है, बस सीधा वो करो, फिर संकल्प स्वप्न जो भी है वो उसके बाद होगा। चलो आ जाइए, नेचुरल नेचर हो जाए श्रेष्ठ कर्म करने की। तो आज हमें किसको सकाश देनी है, जो वृद्ध ओल्ड बुढ़ापे में है, जो जीवन की शाम ढल रही है, ढल चुकी है, जो सोच रहे हैं कि अभी कहीं तो पश्चाताप का भी भाव है, कहीं संतुष्टता का भी भाव है, शरीर से कहीं असहाय भी है तो कहीं कामना भी है, बहुत सारी बातें होती है बुढ़ापे में। तो ऐसी जो बूढ़ी आत्माएं हैं, जो कि कहीं कई वृद्धाश्रम में है, बूढ़ा घर में है, असहाय है, उनको कोई देखने नहीं आता है, मिलने नहीं आता है, बच्चों ने छोड़ दिया है और बहुत सारी बीमारियां है साथ साथ, ऐसी निरीह असहाय अवस्था में है, ऐसी जो बेबस आत्माएं हैं वो भी, और दूसरी भी जो समृद्ध है परंतु अभी बूढ़ी हो गई है, शक्ति नहीं है देह में, ऐसी आत्माएं जो अब तक बाप को जिन्होंने पहचाना नहीं है, पहुंचे नहीं है, ऐसी जो आत्माएं हैं उनकी इस वार्धक्य की अवस्था में उन्हें आह्वान करना, उन्हें सकाश देना।